आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ कि आपको पहला एपिसोड अच्छा लगा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की चर्चा की ओर। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय से हमारा तात्पर्य है ऐसा कार्य जिसे कोई व्यक्ति ना कर सके, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिसे सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं, वो कार्य जो ईश्वर के अलावा मनुष्य मात्र के लिए संभव ही ना हो। अतः पर ब्रह्मा को ही वेदों का रचयिता माना जाता है। परंतु एक पौराणिक कथा और प्रचलित है जिसमें ये कहा गया है कि ब्रह्मा जी के सर से जब चार वेद निकले थे तो असुर ने चोरी करके उन्हें पानी के अंदर छुपा दिया, और फिर विष्णु जी के ही अवतार ने हैग्रीव के रूप में उसे समुद्र से बाहर निकाला, यानी चारों वेदों को वो समुद्र के नीचे से ढूंढ कर लेकर आए। यहाँ हैग्रीव का मतलब अश्व से है। तो हैग्रीव क्या है? एक मनुष्य का शरीर जिस पर एक घोड़े का सर हो। असुरों को मार के जो हैग्रीव थे वो वेदों को वापस लेकर आए। तो यहाँ पर कहानी क्या हो गई है? कुछ खोने और पाने की। अब बात आती है कि वेदों का स्रोत क्या है। सबसे पहले हमें बताया गया कि वो ब्रह्मा जी के सर से निकले थे, तो फिर तो वेदों का स्रोत ब्रह्मा जी होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पर अगर हम माने तो वेदों के स्रोत को हैग्रीव के रूप में भी स्वीकार किया गया है। एक और कथा प्रचलित है जिसमें कहा गया था कि 100 वर्षों का अकाल पड़ा था। कहीं कहीं इस अकाल का जो समय है वो 16 वर्ष भी बोला गया है, कहीं कहीं 20 वर्ष भी बोला गया है। लेकिन उसमें कहा गया कि उस अकाल में जो सारे हमारे ग्रंथ थे वो असंगठित हो गए थे, इन वेदों सहित, मतलब सभी वेद और सभी पुराण। तो वेद व्यास जी ने दोबारा इन वेदों और पुराणों को संगठित किया था। तो अगर यहाँ माना जाए तो एक स्रोत तो वेद व्यास जी भी हो सकते हैं, क्योंकि वेद व्यास जी वो थे जिन्होंने इन वेदों को, जैसे कि हम जैसे मनुष्य, हम जैसे आम आदमी आसानी से समझ पाए, तो इन वेदों को उस आसान बनाने के लिए हमारे अलग अलग भागों में बांट दिया था, जैसे कविता, सविता और मंडल के रूप में। इसके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे हिंदू धर्म में 3 प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिनमें ब्रह्मा को ही सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। रचयिता से हमारा मतलब सिर्फ जीवों की सृष्टि से नहीं है। तीनों देवताओं में ब्रह्मा जी का चित्रण प्रथम व सबसे वृद्ध देवता के रूप में किया जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी को आज भी वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो विष्णु और शिव को है, जबकि ब्रह्मा को विश्व का आदि सृष्टा, प्रजापति, पितामह तथा हिरण्यगर्भ माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि जो सृष्टि निर्माता है, अर्थात जिसने परिवार, कुल और वंश की वृद्धि की हो, वह ब्रह्मा सिर्फ देवताओं के नहीं, दानवों और सभी जीवों के पितामह हैं। तब क्या कारण है कि उन्हें लोगों द्वारा पूजा नहीं जाता? तो इसमें बहुत सारी पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ हम यहाँ उठा रहे हैं। जैसे एक बार की बात है कि पुष्कर में ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था। उस वक्त जो उनकी पत्नी थी सावित्री, वो उनके साथ नहीं थी। किसी वजह से वो यज्ञ स्थल पर नहीं पहुंच पाई। तब ऋषियों ने कहा कि अगर यज्ञ का समय बीत गया, यज्ञ नहीं हुआ, तो चहुं ओर प्रलय हो जाएगी और पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने वहीं की एक स्थानीय ग्वाला गायत्री से विवाह कर लिया और यज्ञ में बैठ गए, क्योंकि वो यज्ञ पति पत्नी के जोड़े के साथ ही संपूर्ण होना था। तो जाट इतिहास के अनुसार यह गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी, और वो जाट ही थी। जब यज्ञ आरंभ हो गया, थोड़ी देर में ही वहां सावित्री जी भी पहुंच गई। लेकिन यज्ञ में अपनी जगह किसी और स्त्री को देखकर वो क्रोध से पागल हो गई। उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि जाइए इस पृथ्वी लोक में, अब आपकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। सावित्री के इस रूप को देखकर सभी देवता बहुत डर गए और उन्होंने उनसे विनती की कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए, क्योंकि ये तो सृष्टि के भलाई के लिए किया गया। तब कहीं जाकर उनका क्रोध शांत हुआ और सावित्री ने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही आपकी पूजा होगी, क्योंकि मैं अब अपना पूरा श्राप वापस नहीं ले सकती और कहीं भी कोई दूसरा मंदिर आपका नहीं बनाया जाएगा, और जो कोशिश करेगा बनाने की उसका विनाश हो जाएगा। तो अभी तक भी आप देखते हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस मृत्यु लोक पर, पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर देखने को मिलता है, वो भी पुष्कर में। ब्रह्मा जी ने पुष्कर झील किनारे कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णमासी तक यज्ञ किया था, जिसकी स्मृति में अनादि काल से यहाँ कार्तिक मेला लगता आ रहा है। यहाँ विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र यही प्राचीन मंदिर है और मंदिर के पीछे, बिल्कुल मंदिर के पीछे से रत्नागिरी पहाड़ पर जमीन तल से 2369 फीट की ऊंचाई पर, 2069 फीट की ऊंचाई पर ब्रह्मा जी की प्रथम पत्नी सावित्री का मंदिर है। और झील की उत्पत्ति के बारे में ये भी प्रचलित है कि ब्रह्मा जी के हाथ से यहीं पर कमल पुष्प गिरने से सर्वप्रथम जल प्रस्फुटित हुआ था, अर्थात एक जल की धारा फूटी थी जिससे इस झील का उद्भव हुआ। और एक दूसरा कारण भी बताया जाता है कि प्रमुख देवता होने पर भी इनकी पूजा बहुत कम होती है, क्यों? एक बार क्या हुआ कि भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा जी को पूरे ब्रह्मांड की थाहा लेने के लिए, अर्थात उसका भ्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन ब्रह्मा जी वापस लौट कर आ गए और शिव जी से असत्य वचन कहा कि वो पूरा भ्रमण कर लौटे हैं। तो शिव जी को इस बात पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने भी ब्रह्मा जी को श्राप दिया। एक तीसरी पौराणिक कथा और प्रचलित है कि जो जगत पिता ब्रह्मा जी हैं, ये माना जाता है, मान्यता है कि उनकी जो काया है वो बहुत कांतिमय और मनमोहक थी। उनकी इस मनमोहक रूप को देखकर एक बार एक स्वर्ग की अप्सरा मोहिनी उनकी ओर कामासक्त हो गई, अर्थात बहुत आकर्षित हो गई। वह समाधि में लीन ब्रह्मा जी के समीप वहीं आसन लगाकर बैठ गई और जब ब्रह्मा जी की तंद्रा टूटी, अर्थात उनकी तपस्या टूटी, उन्होंने मोहिनी से पूछा, देवी आप स्वर्ग का त्याग कर मेरे समीप क्यों बैठी हैं? तब मोहिनी ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मेरा तन और मन आपके प्रति प्रेममत हो गया है, कृपया आप मेरा प्रेम स्वीकार करें। ब्रह्मा जी उन्हें नीतिपूर्ण ज्ञान देने लगे, लेकिन मोहिनी ब्रह्मा जी को अपनी ओर आसक्त करने के लिए, अर्थात अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए लगातार लगी रही। ब्रह्मा जी उसके मोहपाश से बचने के लिए अपने इष्ट श्री हरि को याद करने लगे, अर्थात उनकी तपस्या में लीन हो गए। उसी समय सप्तऋषियों का ब्रह्मलोक से आगमन हुआ। सप्तऋषि ने ब्रह्मा जी के समीप मोहिनी को देखकर उनसे पूछा कि रूपवती अप्सरा आपके पास क्यों बैठी है? तो ब्रह्मा जी बोले, यह अप्सरा नृत्य करते करते थक गई थी तो विश्राम करने के लिए पुत्री भाव से मेरे समीप बैठी है। अब ब्रह्मा जी ने यहाँ फिर असत्य वचन कहा। सप्तऋषि ने अपने योग बल से ब्रह्मा जी की मिथ्या भाषण को जान लिया और मुस्कुरा कर वहां से प्रस्थान कर गए। पर ब्रह्मा जी के अपने प्रति ऐसे वचन सुनकर मोहिनी को बहुत क्रोध आया। मोहिनी बोली कि मैं तो आपकी ओर आकर्षित हुई थी, मैं एक प्रेमिका के रूप में अपनी इच्छाओं की पूर्ति आपसे करना चाहती थी, किंतु आपने मुझे पुत्री का दर्जा दिया। अपने मन पर संयम होने का आपको बड़ा घमंड है, आपको तभी अपने आपने मेरे प्रेम को ठुकराया, आपने तभी मेरे प्रेम को भी ठुकरा दिया। यदि मैं सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करती हूँ, यदि सच्चे हृदय से मैंने आपको स्वीकारा था, एक प्रेमी के रूप में स्वीकारा था, तो ये मेरा श्राप है आपको कि इस पूरे पृथ्वी लोक में कोई भी मनुष्य आपको पूजेगा नहीं, कहीं आपका कोई मंदिर नहीं होगा। तो ये सारे कारण थे कि ब्रह्मा जी को आज तक भी क्यों नहीं पूजा जाता। अब हम बात कर रहे थे वेदों के विषय में ही कि ब्रह्मा जी को ही आदि देव माना जाता है और ब्रह्मा जी से ही सबसे पहला स्रोत हम मानते हैं कि वेदों की उत्पत्ति हुई थी। उन चारों वेदों में सबसे प्रथम वेद हमारा आता है ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्तियाँ और ऋचाएँ मानी जाती हैं। तो जो वेद मंत्र हैं, जो हमारे वैदिक मंत्र हैं, उसके समूह को ही सूक्तियाँ और ऋचाएँ कहा जाता है। यानी कि जो कलेक्शन किया गया है ऋचाओं का, तो उसमें एक सूक्ति में कितने मतलब एक सूक्ति में हमारे जो वैदिक मंत्रों का कलेक्शन किया जाता है, उसे जोड़ा जाता है, उसके समूह को ही हम सूक्तियाँ और ऋचाएँ कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र आदि भी ऋग्वेद में ही लिखे गए हैं, परंतु गायत्री मंत्र का जो विवरण है वो आपको सामवेद और यजुर्वेद में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि माना जाता है कि कुछ भाग इसका ऋग्वेद और कुछ भाग उसका यजुर्वेद से भी लिया गया है। तो इसके विषय में भी हम बाद में चर्चा करेंगे। ये दोनों ही मंत्र बहुत बड़े और महामंत्र माने जाते हैं, जिनके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति मिलती है। तो महामृत्युंजय मंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी रचना ऋषि मार्कंडेय जी ने की है। महामृत्युंजय मंत्र में 33 अक्षर हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये अक्षर 33 देवताओं के द्योतक हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति व 1 षटकार है। अर्थात इन सभी देवताओं की शक्तियां इस मंत्र में समाहित है। महामृत्युंजय जाप ऋग्वेद के मंडल 7 में पाया जाता है। यह मंत्र गुरु वशिष्ठ, जो कि स्वर्ग अप्सरा उर्वशी व मित्र वरुण के पुत्र माने जाते हैं, व देवता सविता को समर्पित है। इस विषय में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, वो इस प्रकार है। एक बार ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुधति, इन दोनों ने पुत्र की कामना हेतु तपस्या की और भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रभावित होकर उन्हें 2 विकल्प प्रदान किए, अर्थात उन्हें 2 चॉइस दी। पहली क्या थी, जिसमें उन्हें एक अल्पायु अर्थात कम उम्र का पुत्र मिलेगा किंतु वो बहुत बुद्धिमान होगा, और दूसरा विकल्प दिया कि एक पुत्र जो कि दीर्घायु होगा, अर्थात उसकी उम्र बहुत लंबी होगी किंतु वो मंद बुद्धि होगा, उसकी बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी, आप कह सकते हैं कि मूर्ख होगा। तो ऋषि मृकुंडु ने पहले विकल्प को चुना, तो पश्चात उन्हें पुत्र रूप में मार्कंडेय की प्राप्ति हुई, जिसका जीवन काल मात्र 16 वर्ष था। जब मार्कंडेय जी बड़े हुए और उन्हें अपने भाग्य के विषय में पता चला, तो उन्होंने शिवलिंग के सम्मुख तपस्या आरंभ कर दी। जब मार्कंडेय जी के जीवन काल का समय पूर्ण हुआ तो यम उन्हें लेने आए, किंतु उस समय मार्कंडेय जी ने शिवलिंग को अपनी बाहों से घेर कर पकड़ लिया। भगवान शिव से दया की भीख मांगने लगे, किंतु उस समय यम उन्हें शिवलिंग से दूर करने पर लगे रहे, अर्थात यम भी उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए अड़े रहे। तभी भगवान शिव बहुत क्रोधित हुए तथा शिवलिंग से प्रकट होकर सजा के तौर पर यम को उसी समय मृत्युदंड दे दिया। परंतु यम के क्षमा मांगने पर भगवान शिव ने यम को इसी शर्त पर पुनर्जीवित करा, अर्थात इसी शर्त पर उन्हें दोबारा जीवन प्रदान किया कि यह बच्चा अब हमेशा जीवित रहेगा। बस तभी से यह मान्यता है कि यह मंत्र व्यक्ति को ना ही केवल मृत्यु भय से मुक्ति दिला सकता है, बल्कि उसकी अटल मृत्यु को भी टाल सकता है। इस मंत्र के निरंतर जाप करते रहने से किसी भी असाध्य बीमारी तथा अनिष्टकारी ग्रहों के दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है, उसे समाप्त किया जा सकता है। इस मंत्र के जाप से आत्मा के कर्म शुद्ध होते हैं तथा आयु और यश की प्राप्ति होती है। साथ ही मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। गायत्री मंत्र के अवतरण पर भी एक मान्यता है। ये माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी पर ही ये सर्वप्रथम प्रकट हुआ था। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या देवी गायत्री की कृपा से अपने चारों मुखों से चारों वेदों के रूप में की थी। प्रारंभ में ये दोनों मंत्र सिर्फ देवताओं के लिए ही थे, किंतु आज हम सभी आम लोग इनका उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता ऋषि विश्वामित्र को माना जाता है। इस मंत्र के उच्चारण से भी हम अपने क्रोध पर संयम पा सकते हैं, शरीर के अनेक व्याधियों से छुटकारा हमें मिल सकता है, रक्त संचार में भी ये बहुत सहायक होता है तथा अस्थमा जैसी बीमारियों में भी ये बहुत ही लाभदायक है। ये दोनों ही मंत्र ऐसे हैं जो कि हमारे चारों ओर एक सकारात्मक वातावरण पैदा करते हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उससे जो ऊर्जा निकलती है वो आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करती है। आपको आत्मिक शांति और आत्मिक शुद्धता तो मिलती ही मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपके आसपास का वातावरण भी शुद्ध होता है। और देवी गायत्री को तो सनातन संस्कृति के धर्मशास्त्रों में बहुत महत्व दिया जाता है। शास्त्रोक्त मान्यता तो ये भी है कि गायत्री मंत्र को समझने मात्र से ही चारों वेदों के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। देवी गायत्री की आराधना से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण शायद वेदों का सार भी गायत्री मंत्र को ही माना जाता है। त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्य देवी भी माता गायत्री को ही माना जाता है। इसलिए देवी गायत्री वेद माता होने के साथ साथ देव माता भी हैं। गायत्री माता ब्रह्मा जी की दूसरी पत्नी है और इनको पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है। इस मंत्र में ओम अर्थात पर ब्रह्मा का अभिवाच्य शब्द है। भू भूलोक, भुवा अंतरिक्ष लोक, स्व स्वर्ग लोक, त परमात्मा अर्थात ब्रह्मा, सवितु ईश्वर अर्थात सृष्टिकर्ता, वरेण्यम पूजनीय, भर्गः अज्ञान तथा पाप निवारक, देवस्यः ज्ञान स्वरूप जो कि भगवान या ईश्वर को हम मानते हैं, धीमहि यानी कि हम ध्यान करते हैं, धियो बुद्धि और प्रज्ञा, यो जो न हमें प्रचोदयात प्रकाशित करें अर्थात हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने इस संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है, वह हमेशा प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। तो इस तरह गायत्री मंत्र की अगर प्रमुखता हम देखें, उसका महत्व अपने जीवन में देखें तो बहुत ज़्यादा है। आज के इस जीवन काल में हम अगर इसका उच्चारण भर भी कर लें एक नियमबद्ध तरीके से तीनों कालों में, तो शायद हम अपना बहुत उद्धार कर सकते हैं। यानी कि गायत्री मंत्र सिर्फ हमारी शारीरिक ही नहीं, हमें मानसिक तौर पर और हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य पर, हमारे आसपास के वातावरण को भी स्वास्थ्यवर्धक बनाता है। आज अपनी चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कल हम आरंभ करेंगे अपने उपनिषद व पौराणिक कथाओं के उद्भव पर। धन्यवाद।